ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा में आगामी आर्थिक वर्ष के बजट का विनियोजन विधेयक 2081 बहुमत से हुआ पारित। नेपाल चीन कूटनीतिक परामर्श संयंत्र की 16वीं बैठक में द्विपक्षीय संबंध और सहयोग क्षेत्रों के विषय में हुआ विचार विमर्श। सुप्रीम कोर्ट ने कोशी सरकार गठन के विरुद्ध दर्ज याचिका को किया खारिज और विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे 5 साल के बाद ब्रिटेन की जेल से हुए रिहा। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा से आगामी आर्थिक वर्ष के बजट का विनियोजन विधेयक 2081 बहुमत से पारित हुआ। बैठक में अर्थमंत्री वर्षमान पून ने विनियोजन विधेयक 2081 को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सभा ने बहुमत से पारित किया। बैठक ने विनियोजन विधेयक 2081 अंतर्गत विनियोजित शीर्षकों पर खर्च कटौती संबंधी सांसदों के प्रस्ताव को बहुमत से अस्वीकृत किया। बैठक ने विभिन्न विधेयकों पर विमर्श करने के प्रस्तावों को पारित किया है, जिनमें राष्ट्रीय ऋण उठाने संबंधी विधेयक 2081 और निवेश सहजीकरण संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने वाला विधेयक 2081 शामिल है। इससे पूर्व विनियोजन विधेयक पर उठे सवालों के जवाब देते हुए प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष का बजट तुलनात्मक रूप से संतुलित, समन्यायिक और परिणाम मूलक है। आर्थिक विकास के नए चरण की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि तीव्रतर विकास के जरिए आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषमताओं का अंत कर सुशासन, सामाजिक न्याय और समृद्धि हासिल करना उनका लक्ष्य है। बैठक की शुरुआत में सांसदों ने रणनीतिक सड़कों के निर्माण में हो रही ढिलाई, बाढ़ भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों का समय पर न हो सके निर्माण, किसानों को समय पर मल उपलब्ध होने में हो रही कठिनाई लगात मुद्दों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षण कराया था। इसके अलावा सांसदों ने विक्रम संवत 2015 से ही संसद के आंतरिक अभिलेखों को नागरिकों द्वारा आसानी से देखे और अध्ययन किए जा सकने के हिसाब से रखने की व्यवस्था करने की मांग भी की थी। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक गुरुवार आषाढ़ 13 गते 11 बजे के लिए बुलाई गई है। नेपाल चीन कूटनीतिक परामर्श संयंत्र की 16वीं बैठक में आज नेपाल और चीन के बीच के द्विपक्षीय संबंध और सहयोग के समग्र क्षेत्र के विषय में विचार विमर्श हुआ। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता अमृत बहादुर राय ने दी। काठमांडू में हुई बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि, आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश, पर्यटन, संपर्क संजाल लगायत क्षेत्रों में सहयोग आदान प्रदान करने के विषय में विचार विमर्श हुआ। काठमांडू में हुई बैठक में शरीक होने के लिए जनवादी गणतंत्र चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेईजिंग नेपाल के 3 दिवसीय औपचारिक दौरे के लिए कल काठमांडू आए थे। उप विदेश मंत्री सुन नेपाल का औपचारिक दौरा पूरा कर कल स्वदेश लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोशी सरकार के गठन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीशों कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी और अब्दुल अजीज मुस्लिम की पूर्णपीठ ने कोशी सरकार के खिलाफ रीट को खारिज कर दिया है। निवर्तमान मुख्यमंत्री केदार कार्की ने खुद को पदमुक्त कर नई सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रदेश प्रमुख परशुराम खावपुंग के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बीते जेठ 25 गते रीट दायर की थी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दै छ?
सबै राम्रै चल्दै छ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। काठमांडू के कलंकी ट्रेड सेंटर का व्यापारिक सटर हस्तांतरण करने के एवज पर विभिन्न लोगों से 13 करोड़ रुपए से अधिक ठगी करने वाले 6 संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू की टोली ने कलंकी स्थित ट्रेड सेंटर का व्यापारिक सटर हस्तांतरण करने के एवज पर 13,73,00,000 रुपए ठगी करने के आरोप में उन लोगों को गिरफ्तार कर आज साझा किया है। गिरफ्तार होने वालों में स्यांगजा के 61 वर्षीय शांति रवन पंगेनी, काठमांडू के 68 वर्षीय नरेंद्र वज्राचार्य, 51 वर्षीय राजू महर्जन, ललितपुर के 62 वर्षीय राजेश कृष्ण श्रेष्ठ, पालपा के 53 वर्षीय निरंजन कुमार श्रेष्ठ और कास्की के 59 वर्षीय चिरंजीवी पौडेल शामिल है। ये जानकारी जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के SP नवराज अधिकारी ने दी। इसी तरह काठमांडू घाटी अपराध अनुसंधान कार्यालय की टोली ने भक्तपुर के दहीकोट के दिल्ली राज राउत का 2 करोड़ रुपए लूट में शामिल होने के आरोप में प्रहरी हवलदार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारी बारिश के साथ गिरी बिजली के कारण आज झापा में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में झापा की कमल गांव पालिका वार्ड नंबर 2 के 46 वर्षीय राजन खड़का और गोरीगंज गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के 42 वर्षीय गिरी की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय झापा ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विकिलीक्स वेबसाइट के संस्थापक जूलियन असांजे आखिरकार ब्रिटेन की जेल से रिहा हो गए हैं। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ने अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक समझौते के तहत सरकारी डेटा चुराने के गंभीर आरोप में दोषी होने की दलील पर सहमति दी है। प्रशांत महासागर में स्थित अमेरिकी क्षेत्र उत्तरी मारियाना द्वीप समूह की अदालत में दायर दस्तावेज के अनुसार असांजे, जो ब्रिटेन में हिरासत में थे, राष्ट्रीय रक्षा संबंधी सूचना प्राप्त करने और उसका प्रचार करने के षड्यंत्र के एक मामले में दोषी पाए गए। विकिलीक्स ने आज सुबह ब्रिटिश समय के अनुसार बताया कि जूलियन असांजे रिहा हो गए हैं और देश छोड़ चुके हैं। उन्हें बुधवार सुबह स्थानीय समय के अनुसार अमेरिकी क्षेत्र में पेश होना है। असांजे को 62 महीने की जेल की सजा सुनाई जा सकती है, जिसमें ब्रिटेन में जेल में बिताए गए 5 साल भी शामिल है। इसका मतलब है कि वो अपने वतन ऑस्ट्रेलिया लौट सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सेना के एक टॉप कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। ये कदम सार्वजनिक आलोचना, कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत और पद को लेकर अयोग्यता के आरोपों के बाद उठाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल यूरी सोडोल इस साल की शुरुआत से यूक्रेन के आर्म्ड फोर्स के कमांडर के पद पर थे। ब्रिगेडियर जनरल एंड्री हनातोव को अब उनकी जगह नियुक्त किया गया है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने इस फैसले के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा में आगामी आर्थिक वर्ष के बजट का विनियोजन विधेयक 2081 बहुमत से हुआ पारित। नेपाल चीन कूटनीतिक परामर्श संयंत्र की 16वीं बैठक में द्विपक्षीय संबंध और सहयोग क्षेत्रों के विषय में हुआ विचार विमर्श। सुप्रीम कोर्ट ने कोशी सरकार गठन के विरुद्ध दर्ज याचिका को किया खारिज और विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे 5 साल के बाद ब्रिटेन की जेल से हुए रिहा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।